हरे राम 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 हरे हरे। व्यासदेव आपके आपके पुस्तकों में बहुत बड़े सुंदर वर्णन तो है पूजा पाठ के, लेकिन लक्ष्य भगवान नहीं है। इसलिए बड़े बड़े साधु महात्मा परमहंस इनका सेवन नहीं करेंगे, ये तो कौओं का तीर्थ हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ऐसा शास्त्र कोई लिखा हो जिसमें भगवान के नाम का गुण महिमा लीला हो लेकिन कोई छंद अलंकार ना हो, तो भी साधु महात्मा उसका बड़ा आदर करते हैं। श्रील प्रभुपाद तो अपने पुस्तकों में विनती करके कहते हैं कि मैं अंग्रेजी भाषा में लिख रहा हूं जो मेरी भाषा नहीं है, ये तो मेरा उद्देश्य केवल कृष्ण का गुण महिमा गाने का है, इसमें कहीं ग्रामर की गलती हो सकती है तो इसको फिर भी महात्मा साधु और पढ़े लोग इसका आदर करेंगे और इसका रसास्वादन करेंगे। और तब तो सावधान होके डांटते हुए नारद जी ने व्यास देव को, फिर एक पहले इससे पहले एक बात बता दें, वैसे व्यास देव भी भगवान का अवतार है, नारद भी भगवान का अवतार है, तो एक भगवान का अवतार छोटा बने दूसरा बड़ा बने इसका अर्थ ये नहीं है। ये भगवान की इच्छा थी कि भागवत की परंपरा स्थापित हो, परंपरा की गुरु परंपरा आचार्य परंपरा की रक्षा के लिए नारद जी के मुख से भागवत का उपदेश व्यासदेव को दिया गया और ये चार ही श्लोक में दिया गया, जिसका विस्तार व्यासदेव ने अपने मन के अंदर हृदय शुद्ध में प्रकट किया। तो डांट के कहा कि आपके इस सारी लेखनी से बहुत बड़ा उपद्रव मच जाएगा, अब आप ऐसे करो, आप भगवान के गुण रूप लीला और धाम का एक जगह पे विशेष वर्णन करो। और इसके बाद नारद जी ने भागवत धर्म की महिमा का उदाहरण देते हुए अपना उदाहरण दिया। तीन जन्मों का वर्णन भागवत में नारद का है। पहले जन्म में वो उपभ्रंश नाम के गंधर्व हैं, गंधर्व बहुत ऊपर की है लोक में रहने वाले हैं, ऊपर की जोनी है हमसे, सुंदर बहुत गंधर्व होते हैं और गंधर्वों का गान बहुत मधुर होता है। लेकिन नारद कहता है मैं गाने के लिए गया लेकिन अप्सराओं में आसक्त हो गया और ऋषियों ने शराब दे दिया और गंधर्व पद से मैं नीचे गिरा और मैं एक दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुआ कन्याकुमज नाम के नगर में और मैं दुर्मल नाग के गोप के घर में प्रकट हुआ, ऐसा हरिवंश आदि पुराणों में इसका वर्णन है। और ब्राह्मणों में मेरा नाम नारद रख दिया, मेरी माँ ब्राह्मण के घर में कायम करती थी और कुछ ब्राह्मण वेदांत भक्ति वेदांत चतुर्मास करने के लिए ब्राह्मण के वहां रुके थे, मेरी माँ ने सेवा की। मैं छोटा बालक था लेकिन चंचल नहीं था, कम बोलने वाला था, संयमी था और उन साधुओं ने कृपा किया, मेरी सेवा को स्वीकार किया, एक दिन उनकी आज्ञा से उनका महाप्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने मुझे दिव्य उपदेश दिया। जब जाने लगे तो मैंने कहा अब मैं रह नहीं पाऊंगा आपके जुदाई में, तो उन्होंने कहा बेटा जब तक माँ है तब तक इसकी सेवा करना, फिर जो हमारी शिक्षा है इसको अपने जीवन में उतारना, आपका कल्याण होगा। तो नारद ने ये चार गुण बताए हैं, चंचल नहीं होना चाहिए, ज्यादा बोलने वाला नहीं होना चाहिए, इंद्रियां संयम में होनी चाहिए और भागवत पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, तभी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कोई साधु कृपा करके देगा। अब नारद जी कहते हैं उनके जाने के बाद मेरी माँ गाय धोने के लिए रात को गई, एक सांप ने डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और मैंने समझा, नारद कहता है भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया है, कृपा किया है। ये है नारद के इस ज्ञान का अनुभव, उसका जो परिणाम ये है कि मेरी माँ चिंता में थी कि मेरा पालन पोषण कैसे करेगी, तो भगवान ने उसको इससे मुक्त कर दिया और मैं मेरी माँ का अंत्येष्टि करवा के जो भी सेवा, और मैं उत्तर दिशा में निकल पड़ा, बड़े जनपदों से घोर जंगलों से भयानक पशुओं के बीच से गुजरता हुआ एक बहुत सुंदर सरोवर में नहाया, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ के उन महात्माओं के द्वारा बताए हुए मंत्र का जैसे मैंने सुमरण किया, भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए, मैं बड़ा आनंदित हो गया, अश्व सात्विक भाव है पुलकित हो गया और फिर भगवान का दर्शन अचानक दिखना बंद हो गया। मैं छटपटाया, मैंने फिर आचमन किया, फिर मैंने सब वही मंत्र उच्चारण किया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तब श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान को किसी मैकेनिकल प्रोसेस से, केवल पूजा करने से, के दंड बैठक करने से, के प्राणायाम करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान अपनी कृपा करके, किसी के ऊपर अनुग्रह करके प्रकट हो तो हो सकते हैं, अपने प्रयास से नहीं। और तब नारद को दो शब्द आकाशवाणी से सुनाई दिए, नारद अभी तुम कच्चे हो, अभी तुम्हारे अंदर कलमश पड़ा है, अब इस जन्म में तुम्हारे को वापस दर्शन पुनः नहीं होगा, तुम्हारे को थोड़ा ये दर्शन तेरी लालसा बढ़ाने के लिए, तेरी उत्कंठा बढ़ाने के लिए दिया गया है, इसलिए अब इस साधन को जारी रखो। ये तो पुराने युगों की बात है, कलयुग में भगवान ने किसी को नहीं कहा है कि एक जन्म के बाद तुम्हारे को दर्शन दूंगा। कलयुग में तो भगवान बहुत प्रकट रूप से महात्माओं को मिले हैं और मिलते हैं, इसलिए कलयुग सम युग नहीं, ऐसा बड़ा भाग्यशाली युग कोई नहीं है जिसमें तत्काल भगवान केवल भगवान के नाम उच्चारण से मिल जाते हैं। केशव लयते कली, कली केशव लयते इति कली, जो केशव को तत्काल प्राप्त करा दे उसको कलयुग कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कलियुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा भगवान का अवतार अन्य समय में नहीं होता है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र भी अन्य समय में नहीं आता है। ये कलयुग तो विशेष है, ब्रह्मा जी के एक दिन में कभी कभार ऐसा कलयुग आता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होता है। प्रथम चरण में कलयुग के बहुत दीर्घ काल के बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होता है, तब ये हरे कृष्ण मंत्र इस धरती के ऊपर आता है। नहीं तो अन्य मंत्र बहुत होते हैं, लेकिन ये महामंत्र कभी भी प्रकट इस धरती के ऊपर ऐसे नहीं होता है जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। इसलिए हम इस वक्त कलयुग में बड़े सौभाग्य हमारा है कि इसी द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का संदेश दे गए, और द्वापर के प्रथम चरण में 522-23 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र को इस धरती के ऊपर विशेष रूप से जाति के भेद को छोड़कर, वर्ण के भेद को छोड़कर, स्त्री पुरुष के भेद को छोड़कर, देश काल के भेद को छोड़कर सबको सब समय जपने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। इसलिए इस मंत्र को जपने से पहले पंच तत्व मंत्र जपने से इस मंत्र के कोई दोष नहीं लगता है। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये पंच तत्व मंत्र है, इस मंत्र जपने से भगवत नाम जपने में जो अपराध होते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं, और पंच तत्व मंत्र में कोई अपराध नहीं। जैसे लाइसन हो गया, बंदूक का लेसन है तो उठा के घूम सकते हो, नहीं तो चोरी का माल समझा जाएगा। तो ये पंच तत्व मंत्र, ये तो हम भाग्यशाली हैं इस हरे कृष्ण मंत्र, ये कोई धरती के ऊपर किसी वेद के अंदर भी ऐसे कुलीचांत्रण या उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रायः ये मंत्र गोलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तना, ये महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र गोलोक में गोपियां और राधा रानी गाती है, राधा रतंत्र हरे कृष्ण मंत्र है, राधा रतंत्र, ये तो राधा और गोपियां कृष्ण को प्रेम से वश में करने के लिए गाती है। और इस मंत्र में हम राधा कृष्ण को ही प्रार्थना करते हैं कि हमको अपनी सेवा में हमको लगा लें। तो ये बड़ा दिव्य मंत्र है। और नारद जी कहते हैं फिर ये जैसे मेरा शरीर छूटा तत्काल मुझे दिव्य शरीर मिला, सब लोकों में जा सकता हूं। और भगवान ने अपनी देवदत्त वीणा, जो लक्ष्मी जी वीणा बजाती हैं, वो नाम मेरे को दी है, अब तो मैं भगवान का कीर्तन करता हूं। नारद जी ये कहकर उत्तर दिशा में चले। व्यास देव ने सरस्वती नदी में आचमन किया और भक्ति योग से मन को एकांत किया और हृदय में उनके भगवान का प्रकट्य हो गया। परम पुरुष भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ व्यास देव के हृदय में प्रकट हुए। जैसे चांद के साथ चांदनी होती है, ऐसे भगवान के साथ भगवान की अंतरंग शक्ति अलादिनी तो नित्य निवास करती है। लेकिन व्यास देव ने देखा कि भगवान के पीछे भगवान की माया शक्ति, और भगवान की माया शक्ति भगवान के आगे आने में लज्जित होती है। माया कभी भगवान के आगे नहीं होती, इसलिए जो भगवान के सामने होते हैं उसको माया नहीं पकड़ती। जो भगवान को पीठ देते हैं उनको माया, वो अपने आप माया की गोद में गिरते हैं, माया नहीं पकड़ती है। माया भगवान के सामने आने में लज्जित होती है, इसलिए जो भगवान के सन्मुख है उसको माया कभी नहीं छुएगी। जब तक आप मंदिर में रहेंगे, हरि कथा में रहेंगे, आपको माया नहीं छुएगी। आप पीठ दे के जैसे जाना शुरू करेंगे, माया के पास ही आप जा रहे हैं, माया मासी बाहर खड़ी है। जैसे आप भगवान से बेमुख हुए, मासी की गोद में गिरे, और ये मासी छोड़ेगी नहीं। ये मासी अंग्रेजी वाली है, मैड, इसका मतलब पागल बना देती है। इसका काम है, तो अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है मासी के लिए। घर में काम वाली को क्या बोलते हैं? मैड। वो मैड का मतलब है जो पागल बना दे, ना आए तो पागल, आए तो पागल, काम कराए करती करती सबको पागल बना देती है। और ये माया सबको इस संसार में पागल बना देती है, ये मैड है। और व्यास देव ने देखा ये माया छाया के समान है, भगवान के पूरे वश में है। जैसे हमारी छाया हमारे वश में होती है, ऐसे माया भगवान के वश में है। मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तते। ये माया मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मेरे आदेश से काम करती है। और फिर व्यास देव ने एक आश्चर्य देखा कि हम सब जीव माया के वश में हैं, और इसके कारण हम सब अपना अनर्थ कर रहे हैं। और व्यास देव ने हमारे दुख को पहचान लिया, हमारी बीमारी का डायग्नोज कर लिया, अनर्थ कर रहे हैं सब। अरे भाई, सब अनर्थ कैसे कर रहे हैं? सबके लिए व्यास देव ने कहा अनर्थ कर रहे हैं। हमने अच्छी तरह से सोच करके देखा कि हम अनर्थ अपना कैसे करते हैं। प्रायः सब कहते हैं हम काम करते हैं, धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, दुकान चलाते हैं, लेकिन किसके लिए? शरीर निर्वाह के लिए। अरे भाई, आत्मा के लिए कुछ करते हो? तुम आत्मा हो के शरीर हो? है आत्मा और काम सारा शरीर के लिए कर रहे हैं और आत्मा के लिए समय नहीं है, यही अनर्थ। हमारा स्वार्थ क्या है हमें पता नहीं है, हम कौन है यही पता नहीं है। जिसको अपना पता नहीं है वो अपना कैसे भला कर सकता है? शरीर समझ के, शरीर के संबंध को सब सब कुछ समझ के, माया का बना हुआ शरीर, माया के संबंध और माया का संसार और माया के कामों में लगे हुए हैं, यही तो अनर्थ है, यही तो माया के वश में। आत्म संबंधी चिंतन कितना करते हैं बताइए? तो 24 घंटे सबको भगवान ने दिए हैं, 8 घंटे तो शरीर के लिए है, सो आराम करो, नहाओ खाओ पियो, कपड़े बदलो, 8 घंटे आपको दिए हैं, कमाओ शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, घर में कामकाज के लिए 8 घंटे काम कर लो, बाकी 8 घंटे आत्मा के चिंतन के लिए। कितने लोग हैं जो 8 घंटे अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये समय का, वैदिक काल में समय का मैनेजमेंट ये है, टाइम मैनेजमेंट। 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे शरीर के निर्वाह के लिए, काम के लिए, 8 घंटे आत्मचिंतन के लिए। आत्मचिंतन के लिए इसलिए 64 माला पहले जपते थे साधु महात्मा, 8 घंटे पूरा स्मरण होता था तभी पूरा समय निकलता था। बताइए कि एक अनर्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आधा घंटा नहीं निकलता है आत्मचिंतन के लिए? तैयारी कोई कर रहा है क्या? देखो बुद्धिमान पुराने जमाने की माताओं के घर में कन्या का जन्म होता था तो उस दिन से सोचती थी मेरी लड़की की विदाई के लिए कुछ सामान इकट्ठा करती, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती थी, और जब विदाई का दिन आता था तो सब चीजें तैयार होती थी, लड़की को विदा करती थी, आंखों में आंसू होते थे लेकिन दिल बहुत खुश होता था कि अपने घर जा रही। ऐसे हम इस शरीर में रह रहे हैं ना, ये हमारा इस शरीर को कहते हैं माया का कहते हैं ना, और जो शादीशुदा स्त्री अपने माता पिता के घर जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैका बोलते हैं ना। तो ये हम सबका मैका है, कोई भी विवाहित स्त्री मैके में सुखी नहीं रह सकती। अब हमारा विवाह करना है, हमको अपने भगवान के, हमारा पति है एक जगन्नाथ, वो जगतपति, अब उसके लिए तैयारी कोई कर रहा है क्या? बच्ची की मां तैयारी आजकल वो भी नहीं करता, कोई नहीं करता है। शादी के दिन जाता है, शादी हाल में चेक देता है, सब सामान किराए का मिलता है, पगड़ी भी किराए की मिलती है, लेकिन पगड़ी वाला आपके पीछे पीछे घूमता है कि ये कब उतारे तो उठाऊ। ऐसा नहीं है कोई, पगड़ी वाले किराए के होते हैं, पीछे पीछे घूमते रहते हैं, आपने रखी नहीं उसने उठाई नहीं। तो ये आजकल कोई तैयारी नहीं कर रहा। ऐसे क्या हम तैयारी कर रहे हैं? एक दिन शरीर से आत्मा को विदा करना पड़ेगा। जब आत्मा शरीर से विदा होती है तो पीछे वाले रोते हैं, लेकिन साधु संत महात्मा की विदाई के ऊपर रोने के साथ अंदर में बड़ा आनंद आता है कि अपने धाम अपने घर जा रहा है, तो भगवत धाम जा रहा है, भगवत लीला में जा रहा है। रोना भी आता है लेकिन बड़ा आनंद भी होता है। रोना इसलिए आता है कि इसका संग नहीं मिलेगा, लेकिन आनंद इसलिए होता है कि अब माया के बंधन से मुक्त होके भगवत धाम जा रहा है। तो ऐसे तैयारी कोई कर रहा है? थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। जैसे रोज बुद्धिमान माता घर में जो होती है लक्ष्मी का रूप होती है, जो पति चार पैसा कमा के आता है तो रुपया दो रुपया रखती रहती है, जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती रहती है कि कभी काम आए, कभी काम आ सकता है अचानक। जैसे ये इकट्ठा करने वाली बुद्धिमान स्त्री को समझदार माना जाता है, ऐसे जो निरंतर भगवान का नाम जप के इकट्ठा करता है वो बुद्धिमान है। ये असली धन है, ये धन तो चोर के चुराने से चुराया नहीं जाएगा, आग जला नहीं सकती है, धरती में रह नहीं सकता है, और ये धन तो आपके साथ इस शरीर को छोड़ने के बाद भी जाएगा। इसलिए तो अभी भी वैदिक संस्कृति में अर्थी के पीछे जाने वाले कहते हैं सतनाम संग है, राम नाम संग है, कहते तुम्हारे साथ राम नाम जाएगा, सतनाम सत्य परम सत्य वही जाएगा। न तुम्हारी का आज तक हमने नहीं देखा किसी अर्थी के साथ किसी ने कहा तेरा बैंक बैलेंस संग है, तेरी गाड़ी मोटर संग है, BMW संग है, कभी सुना है क्या किसी ने कहा? कोई नहीं कहता है कि तुम्हारे ये संग है कुछ भी। तब तो सभी कहते हैं सतनाम, और तब बाकी सब कहते हैं, एक नहीं कहता है। कौन नहीं कहता है? जो ऊपर सोया होता है वो नहीं कह सकता, वो बेचारा नहीं कह सकता। तो तैयारी करके अपनी कथा करना चाहिए। जिस मार्ग के गिने जाए न कोसा हरि नाम उहां संग तोषा, ये बहुत सुंदर गुरबाणी में एक शब्द है। जिस मार्ग का कितने कोस है उसका पता नहीं है, जब यहां से जाना पड़ता है और संयम पुरी जो जन्म यमराज की है वहां तक जब ले जाते हैं, लंबा सफर है, वहां तो न पूरी है न पराठा है न आलू का पराठा है, वहां तो केवल हरि नाम वहां संग तोषा, वहां तो आपका भोजन केवल भगवान का नाम है। अगर लिया है तो उस मार्ग में सुख मिलेगा, नहीं लिया है तो अपने लिए दुख स्वयं खरीद कर रहे। तो व्यास देव ने देखा कि ये बड़े दुखी हो जाएंगे, तो कहा कि मैं तो जानता हूं कि ये बड़ी अनर्थ कर रहे हैं, अनर्थ उपशमनम, इनके अनर्थ से बचाने के लिए मैं तो जानता हूं, सात्विक संहिता श्रीमद् भागवत का प्रकट किया और फिर कहा केवल श्रवण मात्र से कृष्ण भक्ति उपजायते, केवल इस भागवत को श्रवण करने से उसके हृदय में कृष्ण की भक्ति जागृत हो जाएगी और उसका शोक चला जाएगा, मोह चला जाएगा, भय चला जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। और तब प्रश्न ये आता है कि सुखदेव ने भागवत कैसे पढ़ी? तो सुखदेव तो पहले ब्रह्म आनंद में थे। व्यासदेव का विवाह वाटिका माताजी से हुआ था, वो जाबाल ऋषि की पुत्री थी, और व्यास देव के विवाह का मुख्य उद्देश्य था कि मुझे भागवत के लिए योग्य शिष्य चाहिए, और इसी आह्वान से वाटिका से विवाह किया था। और सुखदेव जैसे गर्भ में आए, कैसे गर्भ में आए सुखदेव, वैसे व्यासदेव भगवान के अवतार है, ऐसे आपको पहले बता चुके हैं, भगवान के वेद के विस्तार के अवतार हैं। एक कथा पुराणों में आती है, नारद जी ने एक दिन पार्वती को कहा कि शंकर जी तो बहुत आपसे प्रेम करते हैं, एक प्रश्न पूछ लेना कि उनके गले में नौजवान स्त्रियों की जो मुंडियां हैं ये किसकी है, वो बताएगा नहीं? वो नहीं बताए तो आपको वो त्रिया हट वाला अस्त्र इस्तेमाल करना, और नहीं बताए तब तक आप रूठ के बैठी रहना, और जब बता दे तो बोलना अमर बना दो। अब जब शंकर जी आए तो पार्वती कहने लगी, हमें हे कैलाश पति, हमारे भी पति, लेकिन ये गले में किसकी मुंडियां हैं? अरे बोला, ए भोली गोरी, इसको भूल जाओ, बस कथा सुनो, मैं कथा सुनाता हूं। बोला, कथा नहीं, ये किसकी मुंडियां हैं ये सुनाओ। आप भोलेनाथ ने कहा, वो अपना नारद जी आया था कि हमारी गैराजनी में, यहाँ ये जो आप बात कर रही है ये आपकी अपनी तो नहीं लग रही है। बोला, इस बात को छोड़े, मुझे ये बताइए कि ये किसकी है। कहा, अगर सुनना ये तो सुनो, ये तेरे सारे सर है, 51 पहले पड़ी है मुंडिया, ये तुम हमारे से विवाह होता, तुम्हारा शरीर छूटता, तेरी मुंडी गले में डालता, ये 51 पूरे हो गए, ये सती वाली आपकी मुंडी है, ताजी पड़ी है ये। तब वो नारद की बात के ऊपर कहा कि मुझे अमर बना दो। बोले, चलो अमरनाथ। तो पार्वती के साथ अमरनाथ गए और वहां तांडव नृत्य किया शंकर जी ने, कि ऐसे नहीं है कि कोई अयोग्य व्यक्ति यहां भागवत की कथा सुन ले। और फिर अमरनाथ में भागवत की कथा पार्वती को बोलना शुरू किया। शंकर जी ने बोला, हाँ ऊं बोलती रहना, हाँ ऊं ऐसे बोलना तो पता लगे तुम कथा सुन रही हो। कथा सुनते सुनते पार्वती समाधि में चली गई। अंडे के अंदर एक तोता था, अंडा फूटा, तोता निकला और तोता ऊं ऊं कर रहा था, और जैसे शंकर ने आंख खोल के देखा पार्वती का आवाज नहीं है, और तोते को देखा तो बहुत बड़ा आश्चर्य भी लगा और क्रोध आया कि ये तो योग्य नहीं है, इसने भागवत कैसे सुन ली। तो तत्काल उठाया अपना त्रिशूल और तोते के पीछे भागे, तोता उड़ता हुआ वाटिका के मुख से हृदय में चला गया। तो ये सुखदेव वैसे तो भगवान के धाम का भी है और भगवान शंकर से भी भागवत सुन के आया है, ऐसे यमल शास्त्र में वर्णन है, रुद्र यमल में ऐसा वर्णन है। तो सुखदेव महाराज आ तो गए गर्भ में, लेकिन बाहर जन्म लेने को तैयार नहीं है, 12 साल बीत गए। व्यासदेव कहते, बेटा तुम आ जाओ, भागवत सिखानी है। बोला, बाहर माया पकड़ लेती है भगवान की सबको, ये माया का संसार है, मैं मायके में जाने वाला ही नहीं हूं। अरे नहीं बेटा, माया तुम्हारा क्या बिगाड़ी। बोला, पिताजी माया आपके वश में है। तो व्यासदेव निरुत्तर हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके थे, व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण को लाए। श्री कृष्ण ने कहा, सुखदेव अब आप प्रकट हो जाओ। बोलो, भगवान की माया पकड़ लेगी। बोला, मेरी माया आपको छुएगी नहीं बेटा। सुखदेव प्रकट हुआ, वो नाल अपने साथ में जनोई की तरह ले लिया, कोई संस्कार नहीं, और वन में चला गया। व्यासदेव पीछे कहता, बेटा बेटा कहां जा रहे हो, केवल प्रतिध्वनि होने लगी, बेटा बेटा बेटा, ये तो सबका बेटा है। और एक सरोवर के सामने से आगे से नगन अवस्था में नवयुवक सुखदेव जा रहा था, सुंदर सडोल शरीर वाला, और नारियां नहा रही थी नंगन। सुखदेव चला गया, उनको देखा तक नहीं, कोई विकार नहीं आया। और पीछे व्यासदेव जैसे आया, धोती ओतरी पहनी हुई है, नारियों को लज्जा आई, कपड़ा ढक लिया, बाहर एक तरफ खड़ी हो गई। व्यासदेव को आश्चर्य हुआ, कहा, बेटी तुम तो मेरी पोती के समान हो, मेरा नवयुवक बेटा निर्वस्त्र गया, तुम्हारे को विकार नहीं आ रहा है, और मुझे देख के आप ऐसे कपड़ा ढक के लज्जा कर रही है, कारण बताएंगी। बोला, महाराज आप में कोई दोष नहीं, आप गृहस्थी हैं, आपको स्त्री और पुरुष का भेद पता, वो तो आपके सम्मान में हमको लज्जा से वस्त्र धारण करना आवश्यक लगा, लेकिन आपके पुत्र को ये पर्वत है, ये पेड़ है, ये नदी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पता नहीं, सब एक जैसा है, इसलिए उसके गुजरते हुए हमारे हृदय में कोई विकार हुआ ही नहीं। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बेटा चला गया तो नारद के जो शिष्य थे समिधा लकड़ियां लेने जाते थे यज्ञ के लिए, बोला जंगल में गुरुदेव अकेले होते हैं, भय भी लगता है, तो कहा कुछ श्लोक आपको याद कराता हूं, और जहां सुखदेव बैठा है उस जंगल में गाया करो। एक दिन बहुत सुंदर श्लोक गा रहे थे बच्चे, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का श्लोक था, ब्रहा पीड़म नटवर वपु करण्यो करणिकारकम्, ब्रहा पीड़म सर के ऊपर मोर मुकुट है, ब्रहा पीड़म नटवर वपु, भगवान नृत्य करते हुए चलते हैं, और करणियो करणिकारकम्, दो कान है और एक उनके ऊपर फूल है। अरे भाई दो कान है एक फूल क्यों है? तो जीव गोस्वामी पाद ने एक फूल की परिभाषा में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने जाते हैं तो कान पे एक ही फूल रखते हैं, इसलिए संकेत पुष्प है। बोला किस बात का संकेत देता है? बोला सब बड़े गोप गोपियां तो कृष्ण को विदा होने के लिए ग्वालों के साथ साथ आती हैं, लेकिन जो नौजवान छोटी उम्र की गोपियां कृष्ण के माधुर्य प्रेम रस की जो रसिक हैं, वो तो लज्जा से पीछे खड़ी होती हैं, छुप छुप के देखती हैं आज किस तरफ कन्हैया गैया चराने जाएगा। तो कन्हैया पुष्प को उठाता है, एक को घुमा के जिस कान के ऊपर रखता है वो इशारा हो जाता है कि आज इस दिशा में गैया चराने जाओ, नहीं तो दो कानों के ऊपर दो पुष्प होना चाहिए। एक पुष्प रखने का कारण क्या? बोला एक पुष्प इसलिए रखता है कि पता लगे गोपियों को कि आज किस तरफ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे भगवान विभ्रत वेश कपिश, उनको बहुत सुंदर पीला जैसे बिजली जैसा पीतांबर पहना है, वैजंती माला पहनी है, और बांसुरी के अंदर जब सुंदर सुर ओ स्वर जब उसमें भरते हैं फूंकते हैं, और गोप वृंद के साथ गायों के साथ ब्रज में वन में प्रवेश करते हैं, इस सुंदरता को सुन के सुखदेव का तो समाधि छूट गया, भाग के आया, कौन है ऐसा सुंदर? बोला हमारे गुरुदेव को मालूम है, हमको मालूम नहीं है, श्लोक याद कराया है। फिर एकदम अपने मन को समाहित कर लिया क्योंकि ब्रह्म में निष्ठा। बोला सुंदर तो कोई हो सकता है, लेकिन सुंदर होने के बाद मैं जाऊं और सुंदर में दया न हो, अभिमान सुंदरता का बड़े से बड़ा है, तो नहीं नहीं। फिर वह समाधि में बैठ गए। कुछ दिनों के बाद बच्चे फिर घूमते हुए एक और श्लोक गा रहे थे, वो श्लोक उद्धव के मुख से निकला हुआ, आई बकी काल कूटम, आई बकी ये बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन के ऊपर काल कूट विष लगा के जिगन जिघांश ऐसा आए भयानक लगा के मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने क्या स्तन पान किया, धात्री गति उसको दे दी, इससे ज्यादा और दयालु कौन होगा, किसके शरण में जाए, किम शरण गच्छ, कौन दयालु कौन है इससे ज्यादा। ये सुन के सुखदेव महाराज समाधि को छोड़ के भागा, को ऐसा दयालु कौन है, मारने वाले को भी मां का स्थान दे देता है। बोला हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया है। कौन है आपका गुरुदेव? अरे व्यासदेव हमारा गुरुदेव, अरे वो तो हमारे पिता है। अब संबंध, जब भगवान की भक्ति चालू होती है तो संबंध से होती है, अब संबंध हो गया। और व्यासदेव भी कोई बच्चे के लिए पीछे मोह के कारण नहीं जा रहे थे, ये भागवत पुरुष है, इसको भागवत सिखानी है, इसका सत्संग का सुख लेंगे, इसलिए पीछे जा रहे थे। आज सुखदेव वापस आए हैं, कहते हैं मैं निवृत्त ब्रह्मनिष्ठ था, लेकिन भगवान की इस रसिक लीलाओं ने मुझे इतना आकर्षित किया कि अब तो ब्रह्म सुख मेरे को एक बिंदु जैसा लग रहा है, और ये भगवान की लीला है, अनंत सागर है। मैं ब्रह्म सुख को तज कर और भगवान की लीलाओं का मैं रसास्वादन करने के लिए आ गया हूं। तो ये प्रश्न का उत्तर मिल गया कि 18,000 श्लोक सुखदेव ने कैसे पठन पाठन किया और गान किया, जो 7 मिनट से ज्यादा किसी गृहस्थी के घर बाहर खड़ा नहीं होता था। गाय धोने के बाद बस दूध लिया और चल दिए, वो भी दूध की आवश्यकता नहीं, ग्रस्तों के ऊपर कृपा करके साधु दर्शन देके कुछ उपदेश दे दिया करते थे। तो ऐसे सुखदेव महाराज ने भागवत सीखी। अब प्रश्न ये है कि जो मुख्य श्रोता है भागवत के परीक्षित महाराज, उन्होंने आकर राजपाट क्यों छोड़ा? 12 अध्यायों में परीक्षित के 3 मात्र कुल और 3 पितृ कुलों के कृष्ण भक्ति का वर्णन है। जहां 3-3 पीढ़ियों में भगवत भक्ति होगी तब कोई परीक्षित जैसा महाभागवत पुरुष प्रकट होगा, तब भगवान भागवत भगवान का स्वरूप है, उसका अवतार होगा। तब यहां अब थोड़ा सा महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध का वर्णन है, फिर उत्तरा भागवत माता, फिर द्रौपदी भागवत माता और फिर कुंती, 3 पीढ़ी परीक्षित की भागवत नारियां, इनकी प्रार्थनाओं और इनके महान चरित्र का वर्णन है। और उसके बाद भीष्म पितामह महाराज, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि पांडव और यहां तक के धृतराष्ट्र की भी सदगति और विदुर की शिक्षाओं का वर्णन है। ये 3 कुल के पितृ कुल के महान भागवत पुरुषों का वर्णन है। और उसके बाद परीक्षित महाराज के प्रकट्य और कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करने का वर्णन है। और तब एक अध्याय में सुखदेव महाराज परीक्षित के वहां प्रकट होते हैं, इसका वर्णन है। ऐसे 19 अध्यायों में पहला स्कंद पूर्णाहुति पे पहुंचता है। तो महाभारत का वर्णन इस प्रकार है कि अंतिम महाभारत के युद्ध के 18वें दिन कौरवों की सेना में 3 महारथी बचे हुए थे, एक अश्वस्थामा, 3 वीर बचे हुए थे, अश्वस्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, दूसरा कृपाचार्य और तीसरा कृतवर्मा यदुवंशियों का सेनापति। और दुर्योधन स्वयं पानी में छुप गया था और जिसका पता लगा के भीम ने ललकारा। और उस वक्त बलराम जी ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने के लिए पांडवों का पक्ष ले लिया तो दुर्योधन ने कहा कहीं मेरा शिष्य तब बलदेव जी ने कहा कि मेरा शिष्य दुर्योधन कहीं मेरे पास सहायता के लिए आ गया और मैंने वचन दिया तो कौरवों की तरफ बलराम और पांडवों की तरफ कृष्ण होगा तो भारी युद्ध हो जाएगा और ये मुझे कृष्ण के मैं सेवा में हूं तो मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा करने चला जाता हूं। उस बलराम उस समय तीर्थ यात्रा करते करते कुरुक्षेत्र में उस वक्त पहुंचे हैं जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा है। तो पहले भीमसेन ने कहा, बलदेव ने कहा दुर्योधन मेरे शिष्य हो, अब तेरा सब कुछ समाप्त हो चुका, तेरी सेना समाप्त हो चुकी, अभी भी तुम्हारा बड़ा भाई है युधिष्ठिर तुमको राज दे देगा, तुम अब युद्ध को समाप्त करो, अब मारामारी मत करो, तुम्हारा वंश तो बच जाएगा। तो नहीं माना दुर्योधन, बोला मेरे लिए सबने कुर्बान बलिदान दे दिया, सबका प्राण चला गया, मैं तो युद्ध करूंगा। और भीम नहीं माना, दोनों के वीर में घोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के संकेत के ऊपर भीमसेन ने जब जांघ के ऊपर गदा मारी और जांघ टूटी और दुर्योधन नीचे गिरा तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए कि ये गदा युद्ध के विरुद्ध है, कमर से नीचे गदा नहीं मारी जाती है, मैं दंडित करूंगा, ऐसे भीमसेन ने क्यों किया? और आगे भीमसेन की तरफ भगवान श्री कृष्ण की ओर भीम ने देखा, भीम ने कहा मेरे से बड़ा है बलराम, मैं इनसे युद्ध तो नहीं कर सकता, अब क्या करूं, थोड़ा सा दुख देखा, भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, भागे और बलराम जी का पांव पकड़ लिया। बड़े का पांव पकड़ने से शांति मिल जाती है, सब कुछ भूल जाता। बलराम जी कहते क्या कर रहे हो तुम, भक्तों के पक्षपाती हो, मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं इसको दंड दूंगा, अधर्म किया है। बोला दाऊ जी सुनो तो सही, राज पांडवों था, कौरवों ने लिया, क्या ये धर्म था? भीमसेन को विष दे के डाल दिया पानी में, क्या ये धर्म था? इनको लाक्षाग्रह में जलाने के लिए 5 पंडुआ और भांडुओं और भुआ कुंती को क्या ये धर्म था? क्या द्रौपदी को हारने के बाद सभा में निर्वस्त्र किया, क्या ये धर्म था? वो तो छोड़ो, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त जब द्रौपदी को नंगन कर रहा है दुशासन और ये दुर्योधन कह रहा था ये मेरी जांग पे बैठेगी, तब भीमसेन ने कहा था कि ये तो पतिव्रता धर्म इसकी रक्षा करेगा लेकिन तेरी जांग के ऊपर मेरी गदा बैठेगी। तो क्या क्षत्रिय जब कोई वचन करता है अपने वचन का पालन नहीं करेगा तो घोर नरक में जाएगा? तो क्या आज भीमसेन ने अपने वचन पालन किया तो यह अधर्म है? अरे दाऊ जी इसको भूलो, वो हमारा अभिमन्यु इन 6-6 महारथियों ने अधर्म पूर्वक मार दिया, क्या ये धर्म है? कहा अभिमन्यु मारा गया? अरे वो तो सुभद्रा से प्रेम करते थे बलराम जी, और अभिमन्यु के जब वीर गति का सुना बलराम जी ने गधा को बोला जाओ इसको मरने दो, इसको ऐसे ही मरना चाहिए, ऐसे कह के वहां से रवाना हो गए। भगवान ने भीम की तो संकट से मुक्त कर दिया और इसके बाद वो तीनों आए दुर्योधन से मिलने और अश्वत्थामा कहने लगा राजन आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं अपने पिता का प्रतिशोध लेता और पांडव का वध कर देता। दुर्योधन कहता है अभी तक मैं जीवित हूं, राजा जीवित होता है तो किसी को सेनापति बना सकता है, अगर मैं जीवित रह गया तो आधा राजा आपको दूंगा, आपको सेनापति बनाता हूं, और मैं नहीं रहा तो ये पूरा राज आपका है। और तब अपने लहू से दुर्योधन ने तिलक लगाया, किसको? ब्राह्मण अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र भरद्वाज के पौत्र को लहू से तिलक लगाया, कहीं हल्दी थी कि अक्ष था कि तिलक चंदन से लगाया, क्या क्षत्रिय के लहू से ब्राह्मण के माथे पे तिलक लगा है, लोभ आ गया है कि राज मिलेगा, पांडवों से शत्रुता का भाव आया है और ये तीनों जाके एक पेड़ के नीचे सोए हैं। दो को तो नींद आ गई, ये कहता है अब कैसे मैं पांडवों का वध करूंगा। अचानक देखता है कि बहुत कौए पेड़ पे सोए हुए थे, एक उल्लू आया सब कौओं को मार गिराया, इसने उल्लू को गुरु बना लिया कि अब पांडव सब सोए हुए हैं जाके रात को मारते। अब उल्लू को गुरु बनाया, एक पंचतंत्र में कहानी आती है, पांच तंत्र में पक्षियों ने कहा कि भगवान विष्णु का जो वाहन गरुड़ है वो हमारा राजा है पक्षियों का, लेकिन उसको टाइम तो है नहीं, अब हम राजा बदलते हैं, हम लक्ष्मी के वाहन उल्लू को राजा बनाते हैं। तो तैयारी हो गई, वो तो सिंहासन के ऊपर आके बैठ गया, लेकिन एक कौवे ने कहा देखो हम तो नीच हैं अछूत हैं, लेकिन हैं तो हम भी पक्षी, हमसे पूछो तो नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात तो सुनो, गरुड़ जी कभी संकट है तो आने से देख तो लेगा ना दुख, और ये तो रात को अंधा, ये दिन में तो अंधा होता है, हमारा काम तो दिन में होता है पक्षियों का, रात को हम सोएंगे ये सबको चुन चुन के खाएगा, इसको राजा क्यों बना रहे? सबको समझ में आ जाया, उतार दिया उल्लू को नीचे, तब से उल्लू तो कौओं का बहुत बड़ा शत्रु है, कोई चुन चुन के रात को मार के खाता है। तो ये और कहा अब चलो आक्रमण करेंगे, तो दोनों ने कहा ये अधर्म का युद्ध है, धर्म युद्ध सूर्य उदय से होता है, सूर्य अस्त पे समाप्त होता है, बोला ये धर्म के कारण तो सब कुछ गंवा दिया, अब रात को युद्ध करेंगे। उन्होंने बोला हम अंदर नहीं, बोला तुम बाहर खड़े होना, सोए को मत मारना, भागते के ऊपर बाण चलाना, अंदर मैं जाऊंगा। अब ये यहां से तैयार हुए, वहां भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं अंतर्यामी, कहते हैं पांडवों जब विजय हो जाए ना राजा को अपने शिविर में नहीं रहना चाहिए, कहीं साधुओं का संग करना चाहिए, चलो पांच पांडवों को कृष्ण लेके और एकांत में किसी और स्थान पे लेके चले गए। बोला फिर हमारे शिविर की रक्षा कौन करेगा? बोला शंकर जी रक्षा करेंगे। अब ये शिविर पे पहुंचा तो शंकर जी खड़े हैं, वो तो शंकर जी से युद्ध किया, इनके अस्त्र शस्त्र सब शंकर जी निकल गए, सब कुछ समाप्त हो गया। तब इसने शंकर जी की स्तुति की, शंकर जी ने कहा क्या चाहिए? वरदान दो। बोला यही वरदान मांगता हूं कि विनाश करना है, अंदर जाके सबको मारना है, आशीर्वाद दो। वैसे पुराणों में लिखा है कि अश्वत्थामा रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है, और शंकर जी समझ गए भगवान रात को मुझे यहां छोड़ के गए, मैं प्रलय का देवता हूं तो भगवान की इच्छा प्रलय की होगी, तभी मुझे छोड़ के गए, तो जान बूझ के काम करने से शंकर जी के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, अपराध नहीं लगता, अथवा कोई गलत नहीं कहा जा सकता है। अब अंदर गया है अश्वत्थामा ने, पहले पहले दृष्टद्युम्न को बहुत बड़ा दुख दे के तड़पा तड़पा के मारा है, और भागते हुए को तो कृत वर्मा और कृपाचार्य ने मारा है। तब पांडवों के सैया के ऊपर पांच उनके पुत्र सोए हुए थे। अब इस दृष्ट द्योमन ने, वो इस अश्वस्थामा ने पांचों के गर्दन काटे, और वो गर्दन हाथ में उठाए है, सीधा आया है दुर्योधन के पास। बोला, महाराज ये पांच पांडवों के कटे हुए सर ये आपको मैं देता हूं भेंट, आप खुश हो जाइए। दुर्योधन बहुत खुश हो गया, आज मेरे शत्रुओं का वध हुआ। लेकिन विश्वास नहीं आया कि पांडवों के सर रात रात में कैसे तुमने काट दिए, मेरे को दो तो भीम का सर जरा देख लूं। भीम के सर को लिया और दुर्योधन ने दबाया तो पिचक गया। रे बोला, मूरा तुम, ये पांडवों का सर नहीं हो सकता है, मेरी गदा भीम के सर का सर को फोड़ नहीं सकती है, वो मेरे हाथ से कैसे टूट गया। बड़ी ग्लानि हुई, दुर्योधन को शराब था, जब हर्ष और शोक साथ में आ जाएगा तब प्राण निकलेगा। पहले खुश हुआ, फिर बहुत बड़ा दुख हुआ कि मेरे कार मेरा बदनामी होगी, अंत में मैंने बालकों का सर कटवा दिया है, दुर्योधन का यहां प्राण निकल जाता है। अब कथा यहां ऐसे आगे बढ़ती है कि सुबह उठ के पांच पांडव कृष्ण के साथ वापस आते हैं। सात्यकी कृष्ण और पांच पांडव देखते हैं तो पूरे शिविर के अंदर शमशान का वातावरण है। रोदन को द्रौपदी रो रही है पांच अपने पुत्रों के बचे हुए धड़ों के पास, कोई जीवित नहीं है। एक अक्षौणी सेना रात रात में समाप्त हो गई। अब द्रौपदी को आश्वासन देते हुए अर्जुन कहते हैं, हे पांचाली, जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों का सर काटा है उसका सर ला के दूंगा, उसके ऊपर खड़ी होकर तुम तर्पण करना। और रथ के ऊपर चढ़े हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहा कि जिसने हमारे पुत्रों के ऊपर आक्रमण किया उसके पीछे भागो, रथ को चलाओ। कृतवर्मा और कृपाचार्य कहां जाके विश्राम कर रहे थे, लेकिन रथ के ऊपर चढ़ के अब क्योंकि अपराध हो गया, बालकों का सोए हुए वध किया, तो उसके कारण बहुत जो अश्वस्थामा है वो तो उसका सारा बल चला गया, उसका सारा तेज चला गया, वो भय के मारे रथ के ऊपर चढ़ के भागा, जबकि वीर कभी रथ से भागता नहीं है रणभूमि से। और कृष्ण का रथ जब नजदीक का आया चलाते हुए तो उसके घोड़े थक गए, नीचे उतर के भागा है, मरता क्या नहीं करता। उसने जल लेकर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। अब अर्जुन की ओर एक तपता गोला प्रकाश की तरह आ रहा है। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, हे कृष्ण महायोगिन, मैं आपके शरण में हूं, आप चराचर सब जगत के स्वामी हैं, आप अंदर बाहर सब जानते हैं, मैं आपके शरण में हूं। इस वक्त कौन सा ये तेज मेरी ओर आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पहले प्रार्थना की, फिर अपना संकट भगवान के सामने अर्जुन ने कहा है। तो भगवान ने कहा, पार्थ, ये ब्रह्मास्त्र अश्वस्थामा का है, तुम तत्काल अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करो और ब्रह्मास्त्र को रास्ते में रोक दो। यहां से ब्रह्मास्त्र का आवाहन हुआ है, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं, बहुत बड़ा विनाशकाली तेज हुआ है। आकाश में ब्रह्मा जी ने आके कहा, अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, प्रलय से पहले प्रलय हो जाएगी। तो अश्वस्थामा कहता है, मुझे वापस लेना आता नहीं। बोला, फिर चलाया क्यों? तब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, दोनों का समाहित कर लो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को समाप्त किया, वापस ले लिया और अश्वस्थामा को बड़े पशु की तरह बांध के रथ के अंदर लाया। तो कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए कहा, पार्थ, तुमने तो कहा था इसका कटा हुआ सर लेके आऊंगा, तो जीवित क्यों ले चल रहे हो, सर काट दो। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो द्रौपदी और महाराज युधिष्ठिर इनको दंड देंगे वो उनको देने दीजिए, मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा। जिसके पुत्र मारे गए हों, जिसने पकड़ लिया हो हत्यारे को और कह के आया है अपनी पत्नी को कि मैं पांचाली उनका सर काट के लाऊंगा, लेकिन सर नहीं काटा, ये अर्जुन धर्म ज्ञ है, धर्म जानता है। और भगवान ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा ली और परीक्षा में अर्जुन उत्तीर्ण हुआ, पास हो गया। अब बंधे हुए अश्वस्थामा को जब लाए हैं शिविर में तो द्रौपदी उठ के कहती है, छोड़ो छोड़ो, मुंचे इसको बांधो मत, ब्राह्मण को ऐसे बांध के क्यों लाए हो, ये ब्राह्मण है, हमारे लिए सदा पूजनीय है। अरे पांडव, आपका गुरु है, उसका ये पुत्र है, और गुरु के बाद पुत्र अपने पुत्र में गुरु रहता है, जीवित रहता है, आपने इसको अपमानित क्यों किया और इसको मारो मत, मेरे पांच पुत्र मरे हैं, उनकी पीड़ा को मैं सह रही हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि इसकी माता कृपी इसके दुख को सहे पुत्र की मृत्यु के। और फिर देखो मेरे पांच पति, आप तो जीवित हो, उस कृपी का पति कृपी का पति द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हो चुका है, आप इसको छोड़ दो। और क्षत्रिय अगर ब्राह्मणों का वध करने लग गए तो आपका सब बल वीर्य तेज राज सब नष्ट हो जाएगा। द्रौपदी ने 6 कारण दिए। अब तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जो पांचाली कहती है वो ठीक है, इसको छोड़ दो। उस वक्त भीम कहता है नहीं, ये स्त्री बड़ी भावुक हो गई है, ये दुष्ट है, इसका सर काट के इसको अभी मारना चाहिए। अब तो भगवान श्री कृष्ण की ओर अर्जुन ने देखा, श्री कृष्ण ने कहा देखो पार्थ, मैंने वेदों में कहा है कि आतिताय का वध कर लेना चाहिए, और ये आतिताय है, सोए हुए बच्चों को मारने वाला है। लेकिन वेदों में मैंने वे भी विधान लिखा है, ब्राह्मण शरीर से अवध्य है। अब आप सोच विचार के पांचाली की प्रसन्नता, भीम को संतुष्ट करो, महाराज युधिष्ठिर और मुझे भी संतुष्ट करो। अर्जुन ने विचार किया और तत्काल सोचा कि ब्राह्मण से उसको शरीर से नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण का अपमान करके उसका धन छीन लेना उसके लिए मृत्यु से ज्यादा भयानक है। जन्म से जो एक मणि अश्वस्थामा के मूर्धन्य सर के ऊपर थी उसको अर्जुन ने काट के निकाल लिया और उसको धक्के देके शिविर से बाहर निकाल दिया, उसका अपमान कर दिया। कृष्ण भी संतुष्ट हो गया। अब कृष्ण विदाई के लिए अब वापस आए हैं वहां से, और वापस जब आए हैं तो इतने सारे जन संहार हुआ है, तो स्त्रियों को आगे करके गंगा में सब अपने वीर गति को प्राप्त पुत्रों को भाइयों को पतियों को जलांजलि देने के लिए गंगा के किनारे सब स्त्रियां आगे गई हैं। गंधारी है, कुंती है, द्रौपदी है, उत्तरा है, सब गए हैं साथ में। पीछे पांचों पांडव हैं, धृतराष्ट्र है, ये सब गए हैं वहाँ। उस वक्त रोधन करके अपने अपने संबंधियों का नाम लेके और जल दे रहे हैं। उस वक्त महाराज युधिष्ठिर आधे नदी गंगा के घुटने भर पानी में खड़े थे और तर्पण कर रहे थे अपने बालकों का और अपने भाइयों का। उस वक्त कुंती वहां जरा लजा के मारे खड़ी होके कहती है बेटा युधिष्ठिर, एक अंजलि जल की कर्ण को भी दे दो। अरे माँ, उससे हमारा क्या लेना देना, वो तो पार्थ का बड़ा शत्रु था। नहीं बेटा, वो आपका बड़ा भाई था, एक अंजलि उसको भी दे दो। युधिष्ठिर कहता है महाराज, माता जी अन्याय कर दिया आपने, हमारे बड़े भाई थे, हमको पहले क्यों नहीं बताया। बोला बेटा, मैंने उसको बताया था, उसने कह दिया कि किसी को मत बताना, अगर युधिष्ठिर को पता लग जाएगा कि कर्ण बड़ा भाई है तो वो राज कर्ण को दे देगा, और मैं दुर्योधन के एहसानों के नीचे परोपकार उनके उपकार के नीचे इतना धसा हुआ हूं, मैं राज दुर्योधन को दे दूंगा तो कृष्ण के अवतार के धर्म स्थापना का जो उद्देश्य है वो निष्फल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं बेटा। बोला माँ, आपने बड़ा अन्याय कर दिया, ये जन संहार में ये कारण हो गया। आज मैं धर्मराज सब स्त्रियों को शराप देता हूं, कोई चीज गुप्त हृदय में रख नहीं पाए। और इसके बाद वापस हस्तिनापुर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब आपका राज आपको मिल गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। माता कुंती को प्रणाम किया, बहन सुभद्रा से मिले, द्रौपदी सखी से मिले, और रथ के ऊपर चढ़ के और द्वारका जाने के लिए तैयार हुए हैं। और सभी तैयार खड़े हैं ऊपर, कोई चमर लेके खड़ा है, कोई छाता लेके, सात्यकी आदि खड़े हैं। इतनी देर में अचानक में सफेद कपड़े पहने हुए विधवा उत्तर आती है, कहती है हे कृष्ण महायोगिन, पाही माम पाही माम। सब आश्चर्यचकित हो गए, विदाई के समय विधवा, ये तो अपशकुन है, कहाँ से ये आ गई, क्यों आ गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उत्तरा कहती है मैं तो मेरे पति के साथ सती हो जाती, मुझे जीवन रहने की कोई इच्छा नहीं थी, मेरे उदर में पांडवों का अंश और आपकी भक्ति का वंश, पांडवों का वंश और आपकी भक्ति का अंतिम अंकुर अंश है, और इसको कोई जलाने के लिए बड़ा लोहे का गोला तेज अंदर मेरे उदर में प्रवेश कर रहा है, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। दो श्लोकों में उत्तरायण ने ऐसे भगवान को प्रार्थना की है। भगवान एकदम समझ गए कि अश्वस्थामा में पांडवों के नाम निशान को मिटाने के लिए पांच तो ब्रह्मास्त्र पांच पांडवों के वध के लिए और एक उनके अंतिम अंश पांडवों के वंश के उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु का सुत है उसको नाश करने के लिए भेजा है। भगवान अधीर हो गए, पांडवों ने प्रार्थना नहीं की। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के पांच पांडवों को रस उस अश्वस्थामा के पांच ब्रह्मास्त्रों को अपने सुदर्शन चक्र से शांत कर दिया, पांडवों की रक्षा कर दी और उत्तरा के हृदय से उदर में प्रवेश होकर चारों ओर गदा को तेज घुमाया और इतने अधीर थे कि सुदर्शन चक्र से परीक्षित की रक्षा कर दी जो बालक अंदर था। यहां श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवान से अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, भगवान ने वचन किया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म के लिए तो रथ का पहिया उठाया था, रथांग पाणी बने थे, ले जा आज तो पांडवों की रक्षा के लिए भक्त वत्सल भगवान ने साक्षात सुदर्शन चक्र उठा के पांडवों की रक्षा कर ली। भगवान कहता है कि मेरा वचन टूटे, लोग कहें कि मैं अपना वचन तोड़ने वाला हूं मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन लोग कहें कि भक्त वत्सल है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण पहले स्कंद भागवत में भक्त वत्सल के रूप में दर्शन है, पांडवों के संग जो उनका व्यवहार है, प्रेम का जो उनके साथ प्रोटेक्शन कर रहे हैं ये अति अद्भुत है। फिर तो नौ स्कंद तक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता नहीं है, दसम स्कंद में भगवान प्रकट होते हैं, तब तो बाकी स्कंदों में भगवान की भगवत्ता का वर्णन है, अन्य अवतारों का वर्णन है, लेकिन प्रथम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में पांडवों के साथ दिखाई देते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज ने आगे बढ़ के कहा अब तो इतना बड़ा विनाश से आपने रक्षा कर ली, अब रुक जाइए भैया मत जाइए। कृष्णा कुंती ने आगे बढ़ के कहा कृष्ण अब आप नहीं जाइए रुक जाइए। तब कुंती महारानी की प्रार्थना शुरू होती है, नमस्कार करती हूं मैं आपको, इस सृष्टि के पालन करने वाले आप ही सब कुछ हैं। भगवान आश्चर्यचकित होते कहते बुआ अभी मैं आपको प्रणाम करके आया हूं आप मुझे नमस्कार क्यों कर रही। बोला मैं तो स्त्री हूं कैसे जानूं, परमहंस जानते हैं कि आप साक्षात भगवान हैं और आपका उद्देश्य इस धरती के ऊपर अवतार लेने का केवल एकमात्र है कि लोग पर भागवत धर्म की उद्घोषणा करने के लिए आप धरती के ऊपर आए हैं, तो आप के अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं एक श्लोक यहां पढ़ूंगा, बहुत मुख्य कुछ श्लोक हैं, आठवें अध्याय का क्यों आप अवतार लेते हैं, भक्ति योग के विधान करने के लिए अवतार लेते हैं। आपके अवतार के कोई कहता है यदुवंशों के नाम के लिए आए, कोई कहते हैं धर्म स्थापना के लिए आए। मैं तो स्त्री हूं जानती नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि आप भक्ति योग के विधान के लिए आते हैं, जो और कोई दे नहीं सकता है अवतार वो आप देने के लिए आए। फिर कैसे भक्ति करनी चाहिए हम सबको, उसके लिए श्लोक है, इसका आप पाठ कीजिए। बोलिए शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः। शृण्वन्ति जो सुनता है, गायन्ति जो गाता है, गृह्णन्ति जो गुनगुनाता है, अभीक्षण नित्य निरंतर रोज। सिमरन्ति नन्दन्ति तव हितं जनाः, जो आपका स्मरण करते हैं आपका अभिनंदन करते हैं ऐसे आपके जो महान भक्त है। तएव पश्यन्ति अचेरेण तावका, वो बहुत समय नहीं तत्काल आपको देखते हैं, आपकी कृपा को देखते हैं, आपके चरण कमलों को देखते हैं। भव प्रवाह उपरमम पदाम्बजम। वो आपके चरण कमलों को देखते हैं और जो आपके चरण कमलों को देखता है उसका जन्म मृत्यु का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो भक्ति योग का विधान करने आते हैं। भक्ति कैसी है? भगवान का गीत गाना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की सेवा करना, गुणगान करना, ये स्मरण करना, ये तत्काल भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना, और ये कुंती महारानी की प्रार्थना में भक्ति का साधन है, और भागवत में ये सुखदेव की प्रार्थना में भक्ति का साधन ऐसा ही है। यद अहरणम, यद कीर्तनम, यद ईक्षणम, वो आएगा तब ये सब मुख्य है। और कुंती महारानी ने फिर तो कह दिया, भगवान एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा, माँ बुआ क्या चाहिए? बोला, जो दुख अभी तक आए थे वो सब दोबारा आ जाए। अरे भाई, इतने दुख आप लोग को आए हैं कि अब आपको गलती से मुख से दुख निकला, आप सुख ही मांगती होंगी। बुआ बोला, सुख नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सुख तो हमको राज का मिला, आप जा रहे हो, ऐसे सुख को क्या करूं जिसमें आपकी जुदाई हो रही है। सुख सुख रोग दुख दारू सुख रोग भया, दुख दारू दुख दवाई है, सुख रोग भया। कुंती महारानी पति, ये हमको सुख मिला है, राज मिला है, ये तो रोग है, क्योंकि आपके योग से अलग हो रहे हैं। आपके दुख तो अच्छा था कि आपका दर्शन होता था, बार बार दुख आया, हर समय हमने याद किया और आप आ गए, तो वो दुख बार बार आए तो हाँ, क्योंकि उन दुखों से आप आ जाते हैं, और जो आपको देख लेता है उसका फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं होता है। तो कुंती महारानी दुख नहीं मांग रही, कुंती महारानी भगवान का दर्शन मांग रही, और फिर कहती, अब कृष्ण कृपा करो, मेरा यादवों और पांडवों में कोई मोह न रह जाए। मैं तो, भगवान ने हंस के कहा, मैं भी तो यादव हूं ना। बोला, आप यादव हो, लेकिन केवल आपके चरणों में मेरी वृत्ति ऐसे अवचल हो, घी की धारा की तरह या गंगा गंगोत्री से निकलती है, ऐसे मेरी वृत्ति आपके चरणों में हो। भगवान बड़े इनवाणी से प्रसन्न हुए हैं, और कुछ समय और रह गए हस्तिनापुर में, द्वारका नहीं गए। अब युधिष्ठिर महाराज राज करने को तैयार नहीं है। बोला, मेरे कारण इतने सारी स्त्रियों के पति, बहनों के भाई, माताओं के पुत्र मारे गए, मैं बड़ा इस बड़े घोर संग्राम में पाप का कारण मैं हूं। अब तो धौम्य ऋषि ने कहा, गुरुदेव ने, कि नहीं, क्षत्रिय के लिए रणभूमि में युद्ध में मारना ब्राह्मण के यज्ञ में पशु बलि के समान है, उन सबको तो सदगति होती है, आपको कोई पाप नहीं लगा है। व्यास देव ने आके उपदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, युधिष्ठिर किसी के नहीं माना। बोला, आप कहते हैं राजा का धर्म है, मैं राजा तो नहीं था, राजा तो दुर्योधन था, तो मैं कैसे समझूं कि मैंने धर्म के लिए सब कुछ किया है। और किसी ने कहा, आप अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, पाप से मुक्त हो जाइए। बोला, शराब के बर्तन को शराब से धोने से उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी, पाप कर्म को ऐसे यज्ञ करने से निवृत्ति नहीं हो सकती। किसी के समझाने से समझ नहीं रहे, क्यों? भगवान नहीं समझा पाए। तो लिखा, भगवान की इच्छा है। भगवान बाहर से कह रहे थे मेरी बात मान लो, लेकिन परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हुए कह रहे थे, मेरी बात मत मानो। बोला, क्यों? बोला, भगवान चाहते थे कि ये श्रेय मेरे प्यारे भक्त भीष्म को देना, भीष्म उपदेश दे तब युधिष्ठिर महाराज का कल्याण होगा। अब एक दिन की बात है, युधिष्ठिर महाराज रात को सो नहीं पा रहे, देखा सोचा जाता हूं श्री कृष्ण के पास और जाके थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। देखा को श्री कृष्ण ध्यान में बैठे, आश्चर्य से कहा, देखा कि हे वासुदेव कृष्ण, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? जगत आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? बोला, भैया इस वक्त भीष्म मेरा ध्यान कर रहा है, उत्तरायण आने वाली है और उसने प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया है। अब कैसे करो, कल तैयार हो जाओ, रथ तैयार करो, हम सब कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास चलेंगे, वो मेरे दर्शन की अभिलाषा करके बैठे हुए। दूसरे दिन बहुत बड़े रथ सजाए हैं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर को, आप हस्तिनापुर का सिंहासन जो राज मुकुट है उसको धारण कर लो। और चारों ओर उनके भाइयों को खड़ा कर दिया, जैसे कुबेर गोहकों के बीच में जाता है ऐसे सज धज के बड़े रथ के साथ राजाई भाव से आगे चले हैं। गुरुजन भी साथ चले हैं, भगवान श्री कृष्ण भी चले हैं। ये समाचार जब भीष्म पितामह प्राण त्याग रहे हैं, ये समाचार जब ब्रह्मांड में फैल गया तो सब ऋषियों को आश्चर्य हुआ कि भीष्म इच्छा मृत्यु। अब युद्ध पूरे हुए को भी कुछ उत्तरायण आती है जनवरी में और कार्तिक के बाद युद्ध शुरू हुआ है तो कोई दो ढाई महीने से ऊपर बाबा उधर पड़े हैं और 300 साल से ज्यादा उनकी आयु है और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो बड़े पितृ भक्त है पिताजी के, कुछ मातृ भक्त होते हैं, ये बड़े पितृ भक्त है। पिता शांति ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है गंगा पुत्र को, तो आज वो प्राण त्यागने का सोच रहे हैं। तो सारे ऋषि ब्रह्मांड से आ गए, अंगीर आया, भृगु आया, अंगीरस आया, गौतम आया, कणाद आया, अत्रि आया और परशुराम अपने रेणु का सुत अपने शिशु 10,000 शिशुओं के संग आ गया। ये सारे सुखदेव आदि सब गोस्वामी आ गए हैं, सब शिष्य जब चारों ओर आके सब ऋषि आए हैं। सबका भीष्म देव ने यथा उचित बाणों में, तो बाण तो अंग अंग में इंच इंच में लगे हुए थे, सिर्फ भाव से सबका सत्कार किया। सब भीष्म देव के सीधे तरफ विराजमान हो गए हैं। इतनी देर में देखता है तो 5 पांडव और युधिष्ठिर महाराज के सर के ऊपर हस्तिनापुर का ताज है, मुकुट है। भीष्म मुस्कुराया, देखा कि मैं आज एक पिता को दी हुए वचन से मुक्त हो गया। मैंने मेरे पिता को कहा था जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं होगा तब तक मैं रक्षा करूंगा, अब तो धर्मराज के हाथों में, अब मैं मुक्त होके शरीर त्याग सकता हूं। लेकिन फिर कहा पांडवों, हे महाराज बेटा कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो पांव के पास खड़े थे, चरणों के पास, लेफ्ट साइड पे वाम भाग में पांडव बैठे हैं और सीधे तरफ सब ऋषि बैठे हैं। अब भीष्म पिता मैंने कृष्ण को जैसे ही देखा है तो बड़े प्रसन्न चित्त से कहा, अब जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा तब मुस्कुराता हुआ श्री कृष्ण यही खड़ा रहेगा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रेरणा दी हृदय में कि ये आपके पोते पांडु पुत्र को जरा उपदेश दीजिए, ये राज नहीं कर रहा है, ये तो अंदर में ही समाचार दे दिया। तो भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर महाराज आप धर्म राज हैं, धर्म के ऊपर चलने वाले, आपके भाई आपके आज्ञाकारी और ब्राह्मण, आप तो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान और सेवा करते हैं, कोई पाप नहीं करा, किसी को आपको शत्रु किसी को माना ही नहीं, आपका नाम ही अजात शत्रु है, फिर आपके जीवन में इतना संकट कैसे आया? ऐसे लाक्षाग्रह में जलाना, द्रौपदी का अपमान, इतना घोर 12 साल का वनवास, 1 साल अज्ञातवास, इतना घोर कष्ट आपके ऊपर क्यों आया? युधिष्ठिर महाराज शांत रहे। तब भीष्म पितामह कहते हैं, बेटा युधिष्ठिर ये काल बड़ा बलवान है, काल की चाल को कोई नहीं जान सकता है, कभी काल किसी को राजा बनाता है, किसी को रनक बनाता है। एक दिन हरिश्चंद्र राजा था और दूसरे दिन शमशान में बैठा था, एक दिन हरिश्चंद्र की रानी पटरानी थी और दूसरे दिन धोबियानी बन गई थी। ऐसे पांडवों की रानी भी, 5 पांडवों की पटरानी द्रौपदी भी सैंद्री ब्यूटी पार्लर बन गई थी द्रौपदी की पत्नी की। समय बड़ा बलवान होता है, तो युधिष्ठिर समझ गया समय बलवान होता है। तब भीष्म पिता मैंने उंगली ऐसे उठाई और कहा, ये काल इस कन्हैया के इशारे से चलता है, ये जो सामने खड़ा है ना, ये काल इसके इशारे से चलता है, ये जैसे काल को कहता है ऐसे करता है, इसका अर्थ है ये संकट आपके जीवन में जो आए ये सब इसकी योजना थी, ये आपके कर्मों के कष्ट नहीं है, ये कृष्ण ने आपको इस परिस्थिति में डाला था ताकि पांडव अमर हो जाए और उनका नाम धरती के ऊपर जब तक सूरज चांद हो तब तक रहे, तो ये कष्ट आपको इसकी इच्छा से हुए है क्योंकि इनको आपको इस धरती के ऊपर धर्म स्थापना करने के लिए धर्मराज आपको राजा बनाना था, अब आप, आपका तो नाथ है द्वारका नाथ, आप प्रजा को अनाथ मत करो, आप अब जाके राजपाट को संभालो, ऐसे जब उपदेश दिया है तब भीष्म पितामह ने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण ने देखा कि भीष्म पितामह प्राण त्यागने का सोच रहा है। उस वक्त कहा है, युधिष्ठिर जो पूछना है पूछ लो, आप पितामह जाने वाले हैं। युधिष्ठिर सोचता है बाण लगे हुए इंच इंच में कितनी पीड़ा होती होगी, इस वक्त मैं प्रश्न कैसे पूछूं। लेकिन भगवान ने एक अमृत दृष्टि डाली और भीष्म पितामह के शरीर से सब पीड़ा चली गई। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, चाहे शरीर बाणों से बिंधा हुआ हो लेकिन धर्म उपदेश का अवसर आए तो पीड़ा को भूल के प्रचार करने में भक्तों को आनंद आता है। स्वयं प्रभुपाद बड़ी उम्र में प्रचार करते थे तो भक्त कहते आप रेस्ट करो, थोड़ा आराम कर लीजिए, कहते नहीं। जैसे योद्धा रणभूमि में अगर प्राण त्यागता है तो उसको अच्छा लगता है, ऐसे में खटिया पे पड़ा हुआ मरना नहीं चाहता हूं मैं तो प्रचार करते हुए। तो भगवान ने जब ऐसे कहा तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछे, वर्णाश्रम धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है। तो ये बहुत प्रश्नों का उत्तर सोए हुए भीष्म पितामह ने धारावाहिक प्रवचन किया है। ये प्रवचन महाभारत के अंदर बहुत बड़ा भीष्म उपदेश महाजन का उपदेश है, 12 महाजनों में एक महाजन है। और इसके ऊपर 5-7 तो पृष्ठ में प्रभुपाद ने भी इन सब धर्मों का वर्णन किया है भागवत में। परशुराम अपने शिष्यों को इसलिए लेके आया, शिष्य कहते थे आपका गुरु है भीष्म, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया था, आपसे युद्ध किया था, जब अम्बा की बात आई थी तो आपसे युद्ध किया था। परशुराम ने कहा था आज चलो उसका उपदेश सुनो, कृष्ण भगवान भी उसका सुन बैठ के उपदेश सुनेगा, ये मेरा शिष्य सामान्य नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है। हर समय भगवान का अवतार होता है तो भीष्म भी आते हैं और वीर रस के बहुत बड़े प्रेमी है भगवान के। अब भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया है। कल हम भीष्म की स्तुति का वर्णन करेंगे, कथा को यह विराम देते। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।